पतोलेमेउस और सिकंदर की मृत्यु। अध्याय 11। मिस्र के राजा ने एक विशाल सेना तैयार की जो समुद्र तट के रेत कणों की तरह असंख्य थी, और उसने बहुत सी नावें भी तैयार की। उसने सोचा कि वो धोखे से सिकंदर के राज्य पर अधिकार कर उसे अपने राज्य में मिला ले। वो शांति की बातें करते हुए सीरिया गया। नगरों के निवासियों ने उसके लिए अपने फाटक खोले और उसका स्वागत किया, क्योंकि राजा सिकंदर ने आज्ञा दी थी कि वे उसके ससुर के लिए ऐसा करें। लेकिन पतोलेमेउस जिस किसी नगर में प्रवेश करता था उसमें अपना एक दल छोड़ देता। जब वो अजोत के पास आया, लोगों ने उसे दागोन को जलाया हुआ मंदिर दिखाया। उन्होंने अजोत और उसके आसपास के खंडहर और लोगों की वे अस्थियां दिखाई जो लड़ाई में जलाई गई थीं, क्योंकि उन्होंने उसके रास्ते पर ही इनके ढेर लगा दिए थे। लोगों ने योनातान की शिकायत करते हुए राजा को वो सब बताया जो उसने किया था, किंतु राजा मौन रहा। योनातान राजा से मिलने बड़ी धूमधाम से याफा आया। उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया और वहीं एक साथ रात बिताई। योनातान राजा के साथ एलुथरस नदी के पास तक गया और उसके बाद यरूशलेम लौट गया। राजा पतोलेमेउस ने मन में सिकंदर के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सिलूकिया तक समुद्र तट के सब नगरों पर अधिकार कर लिया। उसने दूतों द्वारा राजा देमेत्रियस को यह कहला भेजा, आइए हम परस्पर संधि कर लें। मैं अपनी पुत्री आपको दे दूंगा जो सिकंदर की पत्नी है, और आप अपने पिता के राज्य के राजा बन जाएंगे। मुझे दुख है कि मैंने उसे अपनी पुत्री दी। उसने मेरा वध करना चाहा। उसने सिकंदर पर यह अभियोग लगाया क्योंकि वो उसका राज्य छीनना चाहता था। उसने उससे अपनी पुत्री वापस ले ली और उसे देमेत्रियस को दे दिया। उसने सिकंदर से अपनी मित्रता भंग कर दी और दोनों की शत्रुता स्पष्ट हो गई। पतोले में उसने अंताकिया में प्रवेश कर एशिया का राज मुकुट अपने सिर पर धारण किया। इस तरह उसने दो मुकुट धारण कर लिए, एक मिस्र का और दूसरा एशिया का। उन दिनों राजा सिकंदर किलिकिया में था क्योंकि उस प्रदेश के लोगों ने विद्रोह किया था। सिकंदर को जैसे ही यह पता चला वो उसके विरुद्ध लड़ने चला। पतोले में उसने एक विशाल सेना के साथ उसका सामना किया और उसे भगा दिया। सिकंदर शरण के लिए अरब भागा और पतोले में उस पूर्ण रूप से विजयी हुआ। अरबी जब्दीएल ने सिकंदर का सिर कटवाकर उसे पतोले में उसके पास भेज दिया। इसके तीसरे ही दिन राजा पतोले में उसकी भी मृत्यु हो गई, और उसने जो दल किलाबंद नगरों में रख छोड़े थे वहां के निवासियों ने उनकी हत्या कर दी। देमेत्रियस 167वें वर्ष राजा बना। यहूदियों को भारी छूट। उन्हीं दिनों योनातान ने यरूशलेम पर अधिकार करने के लिए यहूदिया के लोगों को इकट्ठा किया। उसने उसके विरुद्ध बहुत सारे युद्ध यंत्रों का निर्माण किया। इस पर कुछ धर्मत्यागी यहूदी जो अपनी जाति से बैर रखते थे राजा के पास गए और उससे बोले कि योनातान ने गढ़ को घेर लिया है। ये सुनकर राजा क्रुद्ध हुआ और शीघ्र ही चलकर पतोलेमेउस आ पहुंचा। उसने चिट्ठी भेजकर योनातान को आदेश दिया कि वो घेरा उठाकर जितनी जल्दी हो सके उससे मिलने पतोलेमेउस आए। योनातान ने यह सुनकर भी घेरा बनाए रखने को कहा और इज़राइल के कुछ नेताओं और याजकों को लेकर स्वयं जोखिम का सामना करने गया। वो उपहार के रूप में चांदी, सोना, वस्त्र और अन्य बहुत सी चीजें लेकर राजा के पास पतोलेमाइस गया। इस प्रकार वो उसका कृपा पात्र बन गया। तब कुछ धर्मत्यागी यहूदी उस पर अभियोग करने आए, किंतु राजा ने अपने पहले के शासकों की तरह अपने सभी मित्रों के सामने योनातान का सम्मान किया। उसने प्रधान याजक के पद पर उसकी नियुक्ति की पुष्टि की। जो उपाधियां उसे प्राप्त हो चुकी थीं, उन्हें फिर प्रदान किया और उसका नाम अपने घनिष्ठ मित्रों की सूची में लिखवाया। योनातान ने राजा से निवेदन किया कि वो यहूदिया और समारिया के तीन जनपदों को कर मुक्त कर दे, और उससे प्रतिज्ञा की कि वो उसे तीन मन द्रव्य दिया करेगा। राजा ने यह सब स्वीकार कर लिया और योनातान को इस संबंध में यह पत्र दिया। भाई योनातान और यहूदियों को राजा देमेत्रियस का नमस्कार। हमने आप लोगों के विषय में अपने संबंधी लस्थेनस को जो पत्र भेजा है, उसकी प्रतिलिपि हम आपके पास भेज रहे हैं, जिससे आप उसकी जानकारी प्राप्त करें। पिता लस्थेनस को राजा देमेत्रियस का प्रणाम। यहूदी हमारे साथ मित्रता रखते हैं और वे आज तक हमारे अधिकारों की रक्षा करते आ रहे हैं, इसलिए हमने निश्चय किया है कि हमारे प्रति उनका जो सद्भाव है, हम उनका मूल्य चुकाएं। हमने उन्हें यहूदिया प्रांत दिया है, साथ ही एफ्रेम, लिद्दा और रामतईम के तीनों जनपद और उनके निकटवर्ती भाग समारिया से अलग कर यहूदिया प्रांत में यरूशलेम के याजकों के लिए मिला दिए जाते हैं। ये जनपद उन्हें अपनी भूमि और अपने फलों की उपज पर परंपरागत वार्षिक राजकर के बदले में दिए जाते हैं। अन्य सभी दशमांश और कर, नमक का महसूल, राज उपहार, इन सब से उन्हें मुक्त किया जाता है। इसमें आज से कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पत्र की एक प्रतिलिपि तैयार कराकर योनातान को दे दें, जिससे वो पवित्र पर्वत के किसी सार्वजनिक स्थान पर रखा जाए। देमेत्रियस को योनातान की सहायता। जब राजा देमेत्रियस ने देखा कि उसके शासन में अब देश में शांति है और कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो उसने उन गैर यहूदियों के सिवा, जिन्हें उसने द्वीपों से लाकर भर्ती किया था, अपनी सारी सेना को सेवा से मुक्त कर सभी को अपने अपने घर जाने को कहा। इससे उसके पूर्वजों के सभी सैनिक उससे बैर करने लगे। जब त्रिफोन ने, जो सिकंदर का पक्षधर रह चुका था, ये देखा कि सभी सैनिक देमेत्रियस के विरुद्ध भुनभुना रहे हैं, तो वो अरबी इमलकुए के पास गया, जो सिकंदर के पुत्र कुमार अंतियोह को दीक्षा दे रहा था। उसने उससे अनुरोध किया कि वो उसे उस लड़के को दे दे, जिससे वो अपने पिता की जगह राजा बने। उसने उसे ये सब बताया कि देमेत्रियस ने क्या क्या किया, और ये भी कि सैनिक उससे कैसे बैर करते थे। वो बहुत दिनों तक रुका रहा। इस बीच योनातान ने राजा देमेत्रियस से निवेदन किया कि वो यरूशलेम के गढ़ और अन्य किलाबंद नगरों से अपने सैनिक हटा ले, क्योंकि वे इसराइल के विरुद्ध लड़ते थे। देमेत्रियस ने योनातान को कहला भेजा, मैं आप और आपकी जाति के लिए न केवल ये करूंगा, बल्कि उचित अवसर आने पर आपका और आपकी जाति का सम्मान करूंगा। किंतु इस समय आप ऐसे सैनिक भेजें जो मेरी ओर से युद्ध करें, क्योंकि मेरी सारी सेना मेरे विरुद्ध हो गई है। इसलिए योनातान ने 3,000 युद्ध कुशल आदमियों को अंताकिया भेजा। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन नगर के 120,000 पुरुष राजा का वध करने के लिए जमा हो गए। राजा ने अपने महल में शरण ली और नगरवासी गलियों पर अधिकार कर लड़ने लगे। राजा ने यहूदियों को सहायता के लिए बुलाया। वे सब उसके पास आए और पूरे नगर में चारों ओर फैल गए। उन्होंने उसी दिन 100,000 आदमियों का वध किया। उन्होंने उसी दिन पूरा नगर लूटा और उसमें आग लगा दी। इस प्रकार उन्होंने राजा की रक्षा की। जब नगरवासियों ने देखा कि नगर पर यहूदियों का अधिकार हो गया और अब वे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो उनका साहस टूट गया और उन्होंने राजा से दया की याचना की। उन्होंने कहा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारी सहायता कीजिए। यहूदी हमसे और हमारे नगर से लड़ना बंद करें। उन्होंने अपने शस्त्र डालकर संधि कर ली। राजा और उसके राज्य के सभी लोगों की ओर से यहूदियों का बड़ा सम्मान किया गया और वे लूट से लदकर यरूशलेम लौट गए। जब राजा देमेत्रियस राजसिंहासन पर फिर बैठ गया और देश भर में शांति हो गई, तो उसने अपना वचन भंग कर दिया और योनातान के प्रति उसका रुख बदल गया। उसने उसके किए हुए उपकारों का प्रतिदान नहीं दिया और उसे बहुत तंग करने लगा। योनातान द्वारा कुमार अंतियोख को सहायता। इन घटनाओं के बाद त्रिफोन अंतियोख के साथ लौटा, जो अभी बहुत छोटा था। उसने उसे राजा बनाया और उसके सिर पर राजमुकुट पहना दिया। उसके पास वे सभी सैनिक आए जिन्हें देमेत्रियस ने निकाल दिया था और उसके विरुद्ध लड़ने लगे। देमेत्रियस पराजित होकर भाग निकला। त्रिफोन ने हाथियों को अपने अधिकार में किया और अंताकिया को जीता। तब कुमार अंतियोख ने योनातान को यह लिखा, मैं आपको प्रधान याजकी पद पर स्थायी करता, चारों जनपदों पर नियुक्त करता और आपको राजा के मित्रों में सम्मानित करता हूं। उसने उसे खाने पीने के लिए सोने के बर्तन और सोने के पात्र भेजे तथा उसे सोने के पात्रों में पीने, बैंगनी वस्त्र पहनने और सोने का बक्सुआ लगाने की अनुमति दी। उसने उसके भाई सिमोन को तीरुस की निसेनी से लेकर मिस्र की सीमा तक के देश का सेनापति नियुक्त किया। इसके बाद योनातान ने चलकर नदी के पार के प्रदेश और उसके नगरों का भ्रमण किया। सीरिया की सारी सेना उसकी सहायता करने आई। वो अशकलोन आया तो नागरिकों ने उसका सादर स्वागत किया। वो वहां से आगे गाजा तक गया, लेकिन गाजा वासियों ने फाटक नहीं खोले, इसलिए उसने नगर को घेर लिया। उसके आसपास की जगहों को लूटा और उसके बाद उनमें आग लगा दी। गाजा वासियों ने योनातान से प्रार्थना की और उसने उनसे संधि कर ली। उसने उनके कुलीन पुत्रों को बंधक के रूप में ले लिया और उन्हें यरूशलेम भेजा। इसके बाद उसने दमिश्क तथा उस क्षेत्र का भ्रमण किया। योनातान ने सुना कि देमेत्रियस के सेनापति एक बड़ी सेना के साथ गलीलिया के केदेश तक आ गए हैं और उसे अपदस्थ करना चाहते हैं। वो अपने भाई सीमोन को अपने देश में छोड़कर उनका सामना करने चला। सीमोन ने बेतसूर के पास पड़ाव डाला था। वो बहुत दिनों तक उसके साथ लड़ता रहा और उसे घेर लिया। अंत में वहां के निवासी उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो गए और उसने उनसे संधि कर ली। उसने उन्हें नगर से निकालकर उस पर अधिकार कर लिया और उसमें एक रक्षक सेना को छोड़ रखा। योनातान अपनी सेना के साथ गन्नेसरेत सागर के किनारे पड़ाव डालने के बाद मुंह अंधेरे हासोर के मैदान में पहुंचा। तभी गैर यहूदियों की सेना उन्हें मैदान में दिखाई पड़ी। उन्होंने पहाड़ियों की ओट में कुछ सैनिक घात में बिठा रखे थे। जब योनातान ने सेना का सामना किया तो जो घात में बैठे थे वे निकल पड़े और उस पर आक्रमण करने लगे। योनातान के सभी सैनिक भाग खड़े हुए। अबसालोम के पुत्र मत्तथ्या और खल्फी के पुत्र यूदा के सिवा जो सेनापति थे, उनमें एक भी पीछे नहीं रहा। योनातान ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, सिर पर राख डाली और प्रार्थना की। इसके बाद वो लड़ाई में कूद पड़ा। शत्रु पीछे हटने और भागने लगे। जब उसके आदमियों ने जो भाग रहे थे ये देखा तो वे फिर उसके पास लौट आए और शत्रुओं को केदेश के उनके पड़ाव तक खदेड़ ले गए। उन्होंने वहां पड़ाव डाला। उस दिन लगभग 3,000 गैर यहूदी सैनिक मारे गए। इसके बाद योनातान यरूशलेम लौट आया।